ثم تخصم اجلا، بنا لیا تم نے بچھڑے کو، بس یہ کیا پتا چلا اس سے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا بھی پسند نہیں ہے کہ تم نے اس کو خدا بنا لیا، تم نے اس کو معبود بنا لیا، تم نے اس کو الہ بنا لیا، یہ اللہ تعالیٰ کو بات کہنی بھی پسند نہیں ہے. تم اس کو خدا کہو تو کہو، اللہ نے نہیں کہا. ٹھیک ہے، تو یہ بچھڑے کے پجاریوں کے ساتھ رہے تھے تو ان کو بھی بچھڑے سے بڑی عقیدت ہو گئی تھی، اور ویسے ہی طور طریقے تو اپنا لیے تھے. ہم بھی بچھڑے کے اور گائے کے پجاریوں کے ساتھ رہے ہیں تو آج ہم نے دیکھیں کتنے طور طریقے ان کے اپنا لیے ہیں. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ کتنی خوشیاں، کتنے غم، کتنی اور رسمیں ہم نے ان سے سیکھ لی ہیں، ان کے ساتھ جو رہتے تھے. جب یہ بھی ان کے فرعون قوم کے ساتھ رہتے تھے تو ظاہر ہے انہوں نے بھی سیکھی نہیں. ہم نے ہی جیسے آج ہر چیز میں شامل کر لیا، اب ہمارے تو وہ چیزیں کچھ لگتی ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے، پھر بھی ہم ان کو کرتے ہیں ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم ہو، تم ظلم تمہارا کیا تھا؟ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، شرک جو ہے نا ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم. کیسے ظلم؟ کیسے ہے ظلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک دفعہ ہی لکھ لیں اپنے لیے، ظلم کا معنی ہوتا ہے حقدار کو اس کا حق نہ دینا. اللہ تعالی کا حق ہے کہ صرف اس کے سامنے جھکا جائے، صرف یہ پیشانی اس کے آگے جھکے. انہوں نے کس کے آگے جھکا دی؟ بچھڑے کے آگے. تو ظلم کیا نا، جس کا حق تھا اس کو نہیں حق دیا، بچھڑے کو دے دیا یہ حق، اللہ کا حق لے کے بچھڑے کو دے دیا. اچھا اب آپ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے اس کو معبود بنا لیا تھا، بچھڑے کو. معبود کون ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے جس کو انسان، خدا کس کو بناتا ہے؟ خدا انسان کا وہی ہوتا ہے جو اس کی زندگی میں نمبر ون پرائیورٹی پہ ہو، نمبر ون پرائیورٹی پہ. آپ بتائیں ہر دور میں کوئی نہ کوئی بچھڑے ایسے ضرور رہے ہیں جن کو پوجا گیا، اور آج بھی ہم نے کچھ بچھڑے بنائے ہوئے ہیں جن کو ہم پوجتے ہیں. انہوں نے تو واقعی بچھڑے کو پوجا تھا نا، ہم نے بھی کوئی بچھڑے بنائے ہوئے جن کی ہم پوجا کرتے ہیں. جانتے ہیں وہ بچھڑے کون سے ہیں؟ کہیں مال ہے، کہیں خواہشات نفس ہیں، کہیں دنیا ہے، جن کے پیچھے ہم بھاگ بھاگ کے ہلکان ہو رہے ہیں، جن کے لیے وقت لگا رہے ہیں، جن کے لیے صلاحیت لگا رہے ہیں، جن کے لیے جوانیاں دے رہے ہیں، جن کو اپنی زندگی میں نمبر ون پرائیورٹی پہ رکھا ہوا ہے، جن کو ہم نے خدا بنایا ہوا ہے. ہر ایک کا بچڑا مختلف ہو سکتا ہے، لیکن وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ، تم ظالم ہو. جس نے ایسا کیا وہ ظالم ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے بچھڑے بنا کے بیٹھے ہیں، انہی سے امیدیں لگاتے ہیں، انہی کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، انہی سے مدد چاہتے ہیں، انہی کے آگے جھکتے ہیں، انہی کو زندگی دی ہوئی ہے، انہی کے لیے جیتے ہیں اور انہی کے لیے مرتے ہیں. وہ مل جائیں تو خوش ہے، وہ نہ ملیں تو مرے چلے جاتے ہیں. کیا ایسے بچھڑے ہیں زندگیوں میں یا نہیں؟ سوچے، لکھے اپنے لیے، کیا میں نے بھی تو نہیں اپنی زندگی میں کوئی بچڑا بنا رکھا جس کی میں پوجا کرتی ہوں؟ چاہے وہ کوئی زمانے کے رسومات ہیں، بس ان کے آگے میں گیو اپ کر دیتی ہوں. وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ، جو شرک کرے گا وہ ظلم کر رہا ہے. تم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر ہم نے تم سے درگزر کر دیا اس کے بعد. کس چیز کو درگزر کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اس گناہ کو، اتنا بڑا گناہ تھا، شرک کا گناہ، اتنا بڑا گناہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے معاف کر دیا. عفو میں ہے نا محبت ہوتی ہے, محبت, محبت کے ساتھ معاف کر دینا, چلو کوئی بات نہیں. کس لیے؟ لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر ادا کرو, تاکہ تم یہ احسان مانو کہ اتنے بڑے جرم پہ بھی تمہاری معافی قبول کر لی گئی, تمہاری توبہ قبول کر لی گئی, تم شکر ادا کرو. شکر ادا کرنا چاہیے تھا, اس کا مطلب ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش ہو, اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ملے تو کیا ہونا چاہیے؟ شکر گزاری. اللہ تعالیٰ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کو شکر گزار ہونا ہے. اور شکر گزاری کیا ہوتی ہے؟ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ نعمت کا شکر یہ ہے کہ نعمت کو عطا کرنے والے کی رضا میں خرچ کیا جائے, جس نے دیا اس کے راستے میں لگایا جائے. آپ لگاتے ہیں نعمتوں کو جو آپ کو ملی ہیں ان کو اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں؟ آپ مانتے ہیں نا اللہ نے دیے, ان کو اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں؟ کیونکہ شکر گزاری تو یہ ہے کہ دینے والے کے راستے میں ان کو لگایا جائے. جسم کو لگاتے ہیں اللہ کے راستے میں, ان آنکھوں کو لگاتے ہیں اللہ کے راستے میں, اس عقل کو, سمجھ کو, ذہن جو ہے, یہ صرف ریسیپیاں لکھنے کے لیے یا دیکھنے کے لیے ہے یا پھر اس کو قرآن کے لیے بھی لگاتے ہیں؟ ان ہاتھوں کو, ان کانوں کو, اس زبان کو, یہ نعمتیں ہیں ساری. ہم تو پہلے یاد ہی نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کے کوئی احسانات ہیں ہم پہ, ان کو لگانا تو بعد کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو, تمہیں اس کے بعد میرا شکر ادا کرنا چاہیے تھا, احسان ماننا چاہیے تھا. اور شکر دیکھیں, یاد رکھیں, صرف آپ سوچتے ہیں نا کہ میں نے الحمدللہ کہہ دیا تو شکر ادا کر دیا, نہیں. شکر صرف زبانی نہیں ہوتا, یہ بھی شکر ہی ہے کہ آپ نعمت کو, شکر کا یہ بھی حصہ ہے کہ آپ نعمت کو اس دینے والے کی رضا میں لگائیں, جس سے وہ راضی ہوتا ہو, جس سے وہ خوش ہوتا ہو, اس راستے میں لگائیں اس نعمت کو. سمجھ آئی بات؟ وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ, اور جب ہم نے دی موسا کو کتاب اور فرقان. اچھا اب کیا ہو رہا ہے؟ وہ انہوں نے پیچھے بچڑے کو, اب ہم ساتھ ساتھ دیکھیں, ایک بات سمجھ لیں, ہم ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں بنی اسرائیل کو بھی, اور ساتھ اپنا ذہن میں لے کر آئے کہ یہ آیتیں ہمارے لیے بھی ہیں. اگر یہ ہمارے لیے نہیں ہے تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, جائیں پھر بنی اسرائیل کو ہی دے آئیں. یہ نہیں, یہ ہمارے لیے ہیں, ہمیں جگانے کے لیے. تو بنی اسرائیل کی بھی آپ ہسٹری کو دیکھیں گے ساتھ ساتھ, اور ساتھ ساتھ پھر دیکھیں گے اس کا عمومی معنی بھی. تو جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا دی؟ الکتاب. کون سی تھی الکتاب؟ کیا دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو؟ وہ وہاں پہ گئے ہوئے ہیں 40 دن تک, وہ وہاں پہ ہیں, اب ان کو اللہ تعالیٰ تورات دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. والفرقان, اور فرقان, فرقان کس کو کہتے ہیں؟ فرق سے ہے نا, فرق کرنے والی, یعنی جو حق اور باطل, رائٹ اینڈ رونگ میں فرق کرے. کیا چیز ہے وہ؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ واو کا مطلب, ایک تو واو ہوتا ہے نا اینڈ کے لیے, اور ایک واو اور ہی لکھیں گے لیکن واو تفسیری ہوتا ہے, یعنی اسی چیز کی تفسیر کر رہا ہوتا ہے. الکتاب کی تفسیر ہے الفرقان, یعنی یہی کتاب, اسی کو آگے اس کا فہم, اس کا میننگ. ٹھیک ہے, اس کتاب کی سمجھ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو بھی الفرقان بتایا نا, کہ یہ بھی الفرقان ہے, یہ بھی آپ کو بتاتا ہے, فرق کر کے بتاتا ہے آپ کو حق اور باطل میں, کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے, کیا راستہ سیدھا راستہ اور کون سا راستہ جو غلط ہے, یہ سب یہ الفرقان بتاتا ہے. کس لیے دی یہ کتاب اور فرقان, اس کی سمجھ بھی, اور یہ تورات کس لیے دی؟ جیسے ہمیں قرآن دیا گیا ہے, ان کو تورات دی گئی تھی, تو قرآن تو اسی لیے نا کہ ہم بس پڑھیں اور رکھ دیں, اور ہر ہر حرف پہ دیکھیں 10 نیکیاں ملتی ہیں, تو بس اس کو پڑھ لیں, حفظ کر لیں زیادہ سے زیادہ, یہ ہو سکتا ہے. یا پھر جب شادیاں ہوں تو دلہن کے سر کے اوپر کر لیں, یا پھر نیا گھر وغیرہ لیں تو اس کے اندر ضرور پڑھیں تاکہ کوئی نہ مسئلے ہوں, بس برکت وغیرہ ہو جائے کرے. یا کہیں جن وغیرہ بگانے کے لیے پونکے مارے, یا جاب کسی کی چلی جائے تو اس کو بھی پڑھ لینی چاہیے. ٹھیک ہے نا, तो यही मकसद है किताब का ना हमारी नजर में। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, किताब क्यों दी मूसा अलैहिस्सलाम को, लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हिदायत पा जाओ, इसलिए किताब दी थी। इसका मतलब है अल्लाह ताला किसी कौम को भी किताब क्यों देते हैं बताएं, क्यों देते हैं? क्योंकि किताब में क्या होता है, अल्लाह ताला के अहकामात होते हैं, ठीक है। और अल्लाह ताला के अहकामात इसलिए समझने के लिए और उनके ऊपर अमल किया जाए, चला जाए, इसलिए ना, यानी गाइडेंस है, गाइडेंस प्रोग्राम दिया अल्लाह ताला ने, समझ लें किताब की सूरत में। अब गाइडेंस प्रोग्राम तो इसलिए है ताकि आप उसको समझें और फिर उसके मुताबिक करें, जैसे आप रेसिपी पढ़ते हैं और उसके मुताबिक फिर खाना बनाती हैं, समझ रही होती हैं फिर साथ साथ फिर वैसे वैसे करती रहती हैं, है ना। तो ये किताब इसलिए है ताकि एक एक जिंदगी का काम आप इससे रहनुमाई लें, इससे गाइडेंस लें और वैसे वैसे करती जाए, ठीक है। लेकिन हमने किताब को किस और मकसद के लिए यूज किया, हर एक मकसद के लिए यूज किया, हिदायत के लिए नहीं। इसको हिदायत की किताब समझा ही नहीं, जबकि ये किताब खुलती है तो क्या है, इहदिनस्सिरातल मुस्तकीम, हिदायत ही मांगी गई, हुदल लिल मुत्तकीन, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये तो हिदायत है मुत्तकीन के लिए। अल्लाह ताला ने तो किताब खोलते ही आपको बता दिया ये हिदायत है मुत्तकीन के लिए। आप आज तक इसको पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, हो सकता है रटा भी हो उसको, हिफ्ज भी किया, लेकिन ये ही नहीं याद कि ये हिदायत है हिदायत है हिदायत है। कोई रास्ता आपको जुबानी आप याद कर ले बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक उसको समझे ही नहीं और उसके मुताबिक ड्राइव करके गाड़ी लेकर ही नहीं जाए उस रास्ते पर, तो मंजिल तक तो नहीं पहुंच सकते। अब मिसाल के तौर पे कि आप फ्रेंच में रास्ते को याद कर लिया आपने, लेकिन आपको फ्रेंच नहीं आती, आपको समझ ही नहीं है कि इसमें क्या कहा जा रहा है, राइट जाना है लेफ्ट जाना है आगे जाना है पीछे जाना है किधर रुकना है किधर चलना है, कैसे करेंगे आप फिर अमल। इसी तरह हमारे लिए इसीलिए जरूरी है कि ये जो हम आज काम कर रहे हैं ना इस किताब को सीखने का, ये हम किस लिए सीख रहे हैं, ताकि इससे हमें हिदायत मिल जाए। क्योंकि जब हम इसको समझेंगे, क्योंकि हमारी जुबान नहीं है, जब हम इसको समझेंगे हदीस की रोशनी में और कुरान पाक की और आयात की रोशनी में इसकी तफसीर जानेंगे, तो हमें जिंदगी का रास्ता नजर आएगा, फिर हमें गाइडेंस मिलेगी, इससे हमें पता चलेगा किधर जाना है। तो अगर हमें समझ ही नहीं आई होगी कि अल्लाह ताला हमें क्या बता रहे हैं, किस तरफ हमने रुख करना है, तो क्या पता कि हम किधर भटकते फिरें। तो ये इसका मकसद उनको भी देने का यही मकसद था और हमें भी देने का यही मकसद है। तो अल्लाह की किताबें अल्लाह ताला की तरफ से जो आती हैं, उनका मकसद हिदायत होता है कि भटकने से बच जाओ, सीधे रास्ते पर चल सको, ठीक है। एडिशनल चीजें आप उससे, सवाब भी आपको मिल रहा है बेशक मिल रहा है, और भी आपको आपके दर्जे बुलंद होते हैं उसको जितना आप हिफ्ज कर रहे हैं, और भी आपको इससे बहुत फायदे, एक फायदा थोड़ी है, लेकिन असल मकसद इसका है वो ना भूलिएगा। मकसद से हट के आप सारे ही फायदे ले लें, लेकिन मकसद ही पूरा नहीं हुआ तो क्या फायदा। अच्छा, अब मूसा अलैहिस्सलाम वहां से किताब लेकर आ रहे हैं, अब किताब क्या थी, वो तख्तियों के ऊपर लिखी हुई थी, लेकर आए हैं ताकि इनको हिदायत मिले। अब वापस आए हैं तो क्या देखा कि ये तो आगे बछड़े को पूजा करने लगे हैं। وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ, और जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से, मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत गुस्सा आया कि ये क्या कर रहे हैं, मैं इनके लिए वहां से शरीयत लेने गया हूँ, वापस आया हूँ तो ये तो दीन ईमान ही छोड़ चुके हैं, उल्टा शिरकी करने बैठ गए। या कौमी, ए मेरी कौम, इन्नकुम ज़लमतुम अन्फुसकुम, तुमने अपने जानों पर बहुत जुल्म किया, बहुत जुल्म किया तुमने, जुल्म कैसे किया, शिर्क करके ना, बित्तिखादकुम अल-अज़ला, कि तुमने अजल को, बछड़े को तुमने बना लिया, फिर यहां पे नहीं देखे कहा गया कि इला बना लिया, ठीक है। तो अब तुम क्या करो, इस बछड़े को पकड़ के तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया, बहुत जुल्म कर लिया, अब तुम्हें दो काम करने होंगे। पहला काम, फतूबू इला बारीकुम, तौबा करो अपने बारी ताला के आगे, अपने पैदा करने वाले के आगे तौबा करो, और क्या करो, फकतलू अनफुसकुम, और कत्ल करो अपने नफ्सों को। अपने नफ्सों का मतलब ये नहीं कि अपने आप को कत्ल कर लो, खुदकुशी कर लो, बल्कि नफ्सों का मतलब क्या है, यानी अपने भाइयों को, अपनी कौम वालों को कत्ल करो। क्या मतलब है कि अपने जैसे जो लोग हैं, अपने जो इसराइली हैं, जो यहूदी हैं, तो उनको कत्ल करो, ये है तुम्हारी सजा। ज़ालिकुम खैरुन लकुम इंदा बारीकुम, ये तुम्हें लगता है कि कितना मुश्किल काम है, हम कैसे अपने लोगों को कत्ल करें, उनका खून कैसे करें, लेकिन यही बेहतर है तुम्हारे लिए, तुम्हारे रब के नजदीक, तुम्हारे बारी ताला के नजदीक, कि इसी से तुम्हारा अब ये गुनाह धुल सकता है, और ये नहीं तुम्हारा गुनाह धुलेगा। आप देखें जितना बड़ा जुर्म होता है ना, उसकी तलाफी उतनी बड़ी होती है और होनी चाहिए। ये कॉम्पेंसेशन जो है ना, अब कैसे होगी, ऐसे नहीं है कि इतना बड़ा जुर्म हो और आप कॉम्पेंसेट करें कि सिर्फ आप ये कहें कि नहीं बस ये कर लिया तो काफी है, मैंने जुबानी कलामी बोल दिया। उसकी कॉम्पेंसेशन आप तलाफी करनी होगी, उसके लिए आप देखें शरीयत में भी आप देखें कसम का कफारा है, कफारे हैं ना, तौबा तो करेंगे ही लेकिन कफारा भी देंगे। जानबूझ के आपने रोजा तोड़ दिया तो कफारा है उसका, फिर इसी तरह हज पे कुछ गलतियां उनका फिर आपको कफारा अदा करना पड़ता है। तो ये कफारे क्यों रखे हैं, ये फाइन्स है ना, जुर्माना है, तो ये इसलिए कि वो जुर्म बड़ा है, वो सिर्फ तौबा करने से माफ नहीं होगा, ठीक है। तो इनका जुर्म इतना बड़ा था, इतना बड़ा था कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, अल्लाह ताला के सामने तौबा तो करो ही लेकिन उसके अलावा क्या करना पड़ेगा, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, अल्लाह माफ करे, कि उनको ये हुक्म दिया गया था कि जिन लोगों ने, एक तो वो लोग थे जिन्होंने उनको मना किया कि भाई ये काम ना करो, एक वो लोग थे जिन्होंने मना नहीं किया लेकिन शिर्क भी नहीं किया, और एक लोग थे जिन्होंने ये बछड़े को पूजा, तो जिन्होंने मना नहीं किया था ना, उनको कहा गया कि जिन लोगों ने शिर्क किया है उनकी गर्दने उड़ा दो, उनको कत्ल कर दो। अब आप खुद सोचें, कोई भाई था, कोई बाप था, कोई बेटा था, अपने ही लोग थे ना, और हर कबीले वाले को कहा कि तुम अपने कबीले वालों में से जिसने शिर्क किया सिर्फ उसको ही मारोगे, ठीक है। तो एक जगह आता है कि 3000 मर्द कत्ल किए गए, 3000। अब 3000 कितने ज्यादा, और एक जगह ये भी आता है कि तकरीबन 70,000 कत्ल किए गए, क्योंकि एक जगह आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का ने हुक्म सुनाया और जिन जिन लोगों ने बछड़ा पूजा था उनको बिठा दिया और दूसरे लोग खड़े रह गए और कत्ल करना शुरू किया। कुदरती तौर पे अंधेरा छाया हुआ था, जब अंधेरा हटा तो इनको रोक दिया गया, और शुमार किया तो 70,000 लोग, 70,000 लोग कत्ल हो चुके थे, और ये बड़ा एक सख्त हुक्म था जिसकी इन लोगों ने तामील की, और यानी सबको अपने हाथों से एक तो कत्ल करना और अपनों को कत्ल करना, सोचे कि ऐसी दहशत होगी कि घर घर में खून होगा, कोई कम तादाद थोड़ी है ये। लेकिन यही सजा है फिर मुर्तद की, समझे ना, यही सजा है मुर्तद की, कि जब कोई मुसलमान हो के इस्लाम से फिर जाए, या ये लोग फिरे थे ना, मूसा अलैहिस्सलाम के दीन पे थे और उससे किस पे हो गए, बुतपरस्ती पे चले गए। मुर्तद की सजा क्या है, यहां से इसकी दलील मिलती है। जो लोग, कुछ लोग बोलते हैं ना कि मुर्तद की सजा कहां पे लिखी हुई है कि मौत है, कोई अगर इस्लाम में नहीं आया फाइन, उसकी सजा मौत नहीं है कि आप मारना ही शुरू हो जाएंगे, तुम क्यों ईसाई हो, तुम क्यों यहूदी हो, तुम क्यों हिंदू हो, नहीं आप नहीं कर सकते। लेकिन वंस तुम इस्लाम में एंटर हो जाए तो फिर सोच समझ के एंटर होना, फिर बाहर नहीं निकल सकते, ये याद रखें, फिर उसकी सजा मौत है। और इसकी दलील ये आयत है, क्योंकि शरीयत मूसवी जो थी ना और शरीयत मोहम्मदी में एक कुछ ऐसे अहकामात हैं जो वही सेम आए हैं, सेम टू सेम वही चले आ रहे हैं, उनमें कोई चेंज नहीं लाई गई। तो ये कैसे खैर है, इसलिए कि इससे तुम्हारा गुनाह धुल जाएगा, और दुनिया की कोई भी सजा हल्की आखरत की सजा से, क्योंकि इससे इनके गुनाह माफ हो गया, वरना क्या होता। जहन्नुम की सजा होती है, और वो हर सजा से बड़ी सजा है। कत्ल होना तो जान देना वो इतनी बड़ी तो बात नहीं है, दुनिया में जिंदगी तो एक दिन खत्म हो ही जानी है। तो ये बेहतर है तुम्हारे लिए, तुम्हारे पैदा करने वाले के नजदीक। फताबा अलैकुम, फिर वो मेहरबान हुआ तुम पे। समझ आई बात? ये नहीं है कि ऐसे ही बस तुम जबानी कलामी बस बोल दो कुछ भी करके, बल्कि कुछ ना कुछ उसके ऊपर अल्लाह ताला का जैसे हुक्म है उस तरह करना जरूरी है। इसीलिए हमारे यहां भी तौबा की शराइत है ना, कि सबसे पहली तो शर्त यह है कि आपको शर्म महसूस होनी चाहिए उस गुनाह के ऊपर जो आपसे हुआ। इतनी पशेमानी हो, इतनी शर्मिंदगी हो, हाय मेरे से क्यों हो गया। नंबर टू, फिर आप उसको छोड़ दें। ये नहीं है कि उसको छोड़ा भी नहीं है और बस 1,25,000 दफा आप तस्बीहां पढ़ रही हैं आयत करीमा की और कह रही हैं कि बस गुनाह माफ हो गए मेरे। नहीं, छोड़ना शर्त है। आप छोड़ते हैं नहीं और इस चीज के ऊपर तौबा कर रहे हैं कि हम हराम खा रहे हैं और साथ हराम का कारोबार भी शुरू किया हुआ, तो अब तौबा थोड़ी हुई। तौबा की शर्त क्या है? छोड़ो उसको। या और भी किसी भी गुनाह पे आप तौबा करते हैं तो अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, साथ आप करते भी जा रहे हैं और साथ माफी मांग रहे हैं। कैसी माफी है? किसी को भी आप, किसी के साथ भी अगर आप ज्यादती करते हैं और उससे जाके आप सॉरी करती हैं, तो साथ आप वो काम जारी भी रखें और साथ सॉरी भी करते हैं, वो कहेगा आप ये किस बात पे सॉरी कर रहे हैं। ठीक है ना? तो अल्लाह ताला की हाँ तौबा करना उसके लिए भी कुछ शरायत है। ये नहीं कि उसको मजाक बना लेना चाहिए कि आप तस्बीहों पर तस्बीह इस्तगफार की पड़ती है और काम आपके जहन में कुछ है ही नहीं, किस गुनाह पे तौबा कर रही है। ये हमने तो कोई गुनाह नहीं किया, हमने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया, और दिल में ये ख्याल है कि मैं कौन सी गुनाह करती हूँ, तो पाक साफ ही तो हूं। लोग तो ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, मैंने कौन सा ऐसा कर दिया। और ये कहीं हमारे अंदर छुपी होती है ये बात, इसीलिए किसी ना किसी वक्त पे हमारे मुंह पे आ ही जाती है और हम कह देते हैं हाय मैंने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया था जिसकी मुझे ये सजा मिली। यानी आप अपने आप को बिल्कुल पाक समझते, हाय मैं कौन सी इतनी गुनाहगार थी। तो ये जुबान पे आ गया ना वो जो अंदर छुपा हुआ था, कहीं ना कहीं हम में छुपा होती है ये बात कि हम अपने आप को पाक साफ समझते। हाँ, लोगों के सामने कभी किसी वक्त कोई बात हो जाए तो हाँ ये हम बड़े गुनाहगार हैं, बस हम ऐसे कह देते, लेकिन वो तो ऐसे ही ऊपर ऊपर से होता है। दिल के अंदर हमें ये ख्याल होता है कि हम तो बड़े पाक साफ हैं, और शैतान ऐसे नेक कामों को ना बड़ा कर करके दिखाता है, देखो ना तुम नमाज भी तो पढ़ती है, फलाना नमाज भी नहीं पढ़ता, और तुमने तो क्लास भी अब शुरू कर दी है, वो देखा फलाना तो कोई क्लास भी नहीं लेती, और तुमने तो हिजाब भी लेना शुरू कर दिया। आजकल लोग कहां लेते हैं, वो तो इतने बड़े बड़े नजर आते हैं वो काम के, उनके सामने गुनाह गुनाह तो कुछ है ही नहीं हमारा, बस हमारी टांग टूटती है ना यहां से, नमाज से शुरू होती है फिर हिजाब पे खत्म हो जाती, चलो दीन सारा मुकम्मल हो गया, सारे तो काम हमने कर लिए, हम कौन सा गुनाह करते हैं। तो इसलिए बात जहन में रखने की ये है कि पहले इंसान को ये फीलिंग हो कि मैं गुनाह मुझसे हुआ है, मुझसे अल्लाह की नाफरमानी हुई है, मैं इस गुनाह पे माफी मांग रही हूं। ऐसे ही नहीं हवा में ही नहीं माफियां मांगते रहे, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है, इससे बड़ी क्या हक में कमी का हम कर सकते हैं। हम अल्लाह ताला का हक ही अदा नहीं कर सकते, हम उसका शुक्र ही नहीं अदा कर सकते, हम जितनी नेमतें इस्तेमाल कर रहे हैं हम उसके मुताबिक हक नहीं अदा कर रहे, जैसे हमें करना चाहिए वैसे नहीं हम रह रहे, एक एक नेमत की जो हमें कीमत अदा करनी चाहिए हम नहीं अदा कर पा रहे, मुफ्त में यूज कर रहे हैं, फ्री में। जैसे हमारी जुबानों से शुक्र निकलना चाहिए और जैसे हमारे आजाद से शुक्र की अदायगी होनी चाहिए हम नहीं अदा करते, फिर भी हम अपने आप को खैर इंतहाई पाक साफ समझते हैं। ये शैतान का धोखा होता है कि वो गुनाहों को छोटा करके दिखाता है और नेकियों को बड़ा करके दिखाता है, ताकि इंसान धोखे में ही रहे और कभी माफी ही ना मांगे। तो गुनाह पे पशेमानी, नंबर टू उसको छोड़ना, और नंबर थ्री उस पे इरादा करना, पक्का इरादा कि आइंदा मैं ये गुनाह नहीं करूंगी। और अगर ऐसा नहीं करते तो फिर जुबानी कलामी कोई तौबा नहीं होती। तो फताबा अलैकुम, तो वो तो फिर भी उनके साथ तो वो हो गया कि चलो उनका गुनाह यहीं पे माफ हो गया, कि उनकी तौबा भी कबूल हो गई, क्योंकि एक दूसरे को कत्ल करा था उन्होंने। यहीं पे अल्लाह ताला ने फिर अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं कि फिर वो मेहरबान हुआ तुम पे, अल्लाह ताला मेहरबान हो गया, यानी उनकी तौबा कबूल फरमा ली अल्लाह ताला ने, अल्लाह ने उनको माफ कर दिया। और हम कई गुना ऐसे करते हैं कि हमें यही नहीं पता अल्लाह ताला की तरफ से माफी हुई है कि नहीं हुई, हमें बख्श दिया गया कि नहीं बख्श दिया गया, और हम खुश 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 फिर रहे होते हैं जमीन में, ये पता ही नहीं कि अल्लाह ताला हमसे नाराज है या हमसे राजी है। इन्नहू हुवा तव्वाबुर रहीम, बेशक वो ही बहुत तौबा कबूल करने वाला है, बार बार रहम करने वाला है अपने बंदों पे, इंसानों की गलतियां होती हैं वो उनको माफ कर देता है। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। ठीक है, यहाँ तक तिलावत सुनते हैं, इंशाल्लाह फिर आगे चलते हैं।
या बनी इस्राइल اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم